शांति। अभिव्यक्त मुरली 24 अप्रैल 1983 आगे का भाग। बैलेंस से कमाल होती है। बैलेंस रखने वाले का परिणाम सेवा में भी कमाल होगी, नहीं तो बाहर मुक्ता के कारण कमाल के बजाय अपने व दूसरों के भाव स्वभाव की धमाल में आ जाते हो। तो सदा सर्व की सेवा के साथ साथ पहले स्व सेवा आवश्यक है। यह बैलेंस सदा स्व में और सेवा में उन्नति को प्राप्त कराता रहेगा। कुमार तो बहुत कमाल कर सकते हैं। कुमार जीवन के परिवर्तन का प्रभाव जितना दुनिया पर पड़ेगा उतना बड़ों का नहीं। कुमार ग्रुप गवर्नमेंट को भी अपने परिवर्तन द्वारा प्रभु परिचय दे सकते हैं, गवर्नमेंट को भी जगा सकते हैं, लेकिन वह परीक्षा लेंगे। कौन? ऐसे ही नहीं मानेंगे। तो ऐसे कुमार तैयार है गुप्त सीआईडी आपके पेपर लेंगे कि कहां तक विकारों पर विजयी बने हैं। आप सबके नाम गवर्नमेंट में भेजे, 500 कुमार भी कोई कम थोड़ी है। सबने लेजर में अपना नाम और एड्रेस भरा है ना, तो आपकी लिस्ट भेजे। सभी सोच रहे पता नहीं कौन से सीआईडी आएंगे। सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट जानबूझकर क्रोध दिलाएंगे। पेपर तो प्रैक्टिकल लेंगे ना, प्रैक्टिकल पेपर देने लिए तैयार हो। बाप दादा के पास सबका हाँ और ना फिल्म की रीति से भर जाता है। यह लक्ष्य रखो कि ऐसी रूहानी शक्तिशाली आत्मिक शक्तिशाली युद्ध ग्रुप बनावे जो विश्व को चैलेंज करे कि हम रूहानी युद्ध ग्रुप विश्व शांति की स्थापना के कार्य में सदा सहयोगी है और इसी सहयोग द्वारा विश्व परिवर्तन करके दिखाएंगे। समझा क्या करना है? ऐसा पक्का ग्रुप हो, ऐसे नहीं आज चैलेंज करे और कल स्वयं ही चेंज हो जाए। तो ऐसा संगठन तैयार करो। मेजॉरिटी नए नए कुमार है, लेकिन लास्ट सो फास्ट जाकर दिखाओ। बैलेंस की कमाल से विश्व को कमाल दिखाओ। तो कल पढ़ रहे थे कुमार ग्रुप भागदौड़ बहुत करता है। सेवा में भी बहुत भागदौड़ करते हो ना, लेकिन सेवा के क्षेत्र में भागदौड़ करते बैलेंस रखते हो। स्व सेवा और सर्व की सेवा दोनों का बैलेंस सदा रहता है। बैलेंस नहीं होगा तो सेवा की भागदौड़ में माया भी बुद्धि की भागदौड़ करा देगी। बैलेंस से कमाल होती है। बैलेंस रखने वालों का परिणाम सेवा में भी कमाल होगा, नहीं तो बाहर मुक्ता के कारण कमाल के बजाय अपने व दूसरों के भाव स्वभाव की धमाल में आ जाते हो। स्व सेवा और विश्व सेवा, स्व कल्याणी और विश्व कल्याणी वरदान है ना आज का। तो सदा सर्व की सेवा के साथ साथ पहले स्व सेवा आवश्यक है। दूसरों की सेवा से पहले अपनी सेवा, परमार्थ से पहले स्वार्थ। तो कमलेश भाई क्या बनना है? स्वार्थी। स्वार्थी भव। स्व के अर्थ, स्व की मुक्ति के अर्थ, स्व के कल्याण के अर्थ किया हुआ पुरुषार्थ को स्वार्थ कहा जाता है। तो पहले स्व सेवा आवश्यक है। यह बैलेंस सदा स्व में और सेवा में उन्नति को प्राप्त करेगा। एक तो कमाल करेगा सेवा में कमाल और उन्नति। कुमार तो बहुत कमाल कर सकते हैं। कुमार जीवन के परिवर्तन का प्रभाव जितना दुनिया पर पड़ेगा उतना बूढ़ों का नहीं पड़ेगा, बड़ों का नहीं पड़ेगा। कुमार ग्रुप गवर्नमेंट को भी अपने परिवर्तन द्वारा प्रभु परिचय दे सकते हैं, गवर्नमेंट को भी जगा सकते हैं, लेकिन वह परीक्षा लेंगे, ऐसे ही नहीं मानेंगे। तो ऐसे कुमार तैयार है ना, गुप्त सीआईडी आपके पेपर लेंगे। क्या पेपर लेंगे? हमारे जानबूझकर क्रोध दिलाएंगे और उल्टे सीधे प्रश्न पूछेंगे और उकसाएंगे और मोहिनी रूप धारण करेंगे, प्रलोभन देंगे, आकर्षित करेंगे और दिनचर्या कैसी है, जो बोलते वैसा है या खौफनाक है? और अक्षय भाई क्या चेक करेंगे गवर्नमेंट वाले? सीआईडी, गुप्त सीआईडी आकर पेपर लेंगे आपका। कुमुद बहन, गुप्त सीआईडी आएंगे और पेपर लेंगे कि कहां तक विकारों पर विजयी बने हैं। ये बस ऐसे ही कहते रहते हैं कि हमने विकारों को जीत लिया। आप सबके नाम गवर्नमेंट करप्शन और एडल्ट्रेशन, चेकर बनो और मेकर और फिर जाकर रूलर। 500 कुमार भी कोई कम थोड़ी है, सबने लेजर में अपना नाम और एड्रेस भरा है ना। कौन सा लेजर?
लेजर चौपड़ी हो गई, लेजर
रजिस्टर। तो आपकी लिस्ट भेजे, सभी सोच रहे पता नहीं कौन से सीआईडी आएंगे, जान बूझ कर क्रोध दिलाएंगे। पेपर तो प्रैक्टिकल लेंगे ना, प्रैक्टिकल पेपर देने लिए तैयार हो। बाप दादा के पास सबका हाँ और ना फिल्म की रीति से भर जाता है। यह लक्ष्य रखो कि ऐसा रूहानी शक्तिशाली, आत्मिक शक्तिशाली युद्ध ग्रुप बनावे जो विश्व को चैलेंज करे कि हम रूहानी युद्ध ग्रुप विश्व शांति की स्थापना के कार्य में सदा सहयोगी है। रूहानी युद्ध ग्रुप, और इसी सहयोग द्वारा विश्व परिवर्तन करके दिखाएंगे। समझा क्या करना है? ऐसा पक्का ग्रुप हो, ऐसे नहीं कि आज चैलेंज करे और कल स्वयं ही चेंज हो जाए। तो ऐसा संगठन तैयार करो। मेजॉरिटी नए नए कुमार है इस संगठन में, 83 की मुरली है, नए नए कुमार है, लेकिन लास्ट सो फास्ट जाकर दिखाएंगे। बैलेंस की कमाल से विश्व को कमाल दिखाएंगे। तो गुप्त सीआईडी आएंगे और क्या करेंगे? क्रोध दिलाएंगे। गुप्त सीआईडी आएंगे और क्या करेंगे? चेक करने के लिए कितना एडल्ट्रेशन है हमने। अगर कोई क्रोध दिलाए तो क्या करेंगे? चाहे ज्ञानी चाहे अज्ञानी, क्रोध अगर आ रहा है उसका संबंध ज्ञानी अज्ञानी से नहीं, वो क्रोध से संबंध है, क्योंकि अंदर वो है। बाहर तो जो ला रहा है उसको वो साधन मात्र है। जैसे मोह अंदर है, उसे बस कोई तो ला रहा है, उसके लिए साम्राज्य की आवश्यकता नहीं, एक लंगोटी भी काफी है मोह को बाहर खींचने के लिए। क्रोध को लाने के लिए बहुत बड़ी परिस्थिति की आवश्यकता नहीं है। अगर वो है तो अपॉर्चुनिटी, अवसर ढूंढेगा वो बाहर आने का। वो व्यक्ति हो सकता है, वस्तु हो सकती है, परिस्थिति हो सकती है, वो ज्ञानी हो सकता है, अज्ञानी हो सकता है। रखा है, ये हमने सोच रखा है कि ये अज्ञानी और ये ज्ञानी है, परंतु क्रोध को थोड़ी ये पता है, उसे तो निकलना है बाहर, उसे खींचने वाला हाथ चाहिए, वो नीचे हाथ मिला कि बाहर, और फिर हम अपना जस्टिफिकेशन देते क्योंकि ये ज्ञानी था इसके लिए हमें आया, क्रोध को थोड़े ही पता है कुछ, वो तो वहां है, और क्रोध की परख संगठन में ही होती है। एक सन्यासी बचपन में चला गया हिमालय, 20 साल तक रहा जंगलों के बीच पहाड़ों के बीच तपस्या में मग्न, उसका मन इतना शांत हो गया, सोचा भी नहीं, उसने सोचा कि क्रोध जैसी वस्तु तो जैसे उसे पता ही नहीं, जैसे जीत ली, जो उसके आश्रम में वहां लोग आते थे और कहते थे हमें बड़ा क्रोध आता है, वो उनको कहता था कि उसको आश्चर्य होता था कि क्रोध भी नाम की कोई चीज होती है क्या, वो भी कभी थोड़ा बहुत क्रोध करता था, पर अभी इतने लंबे समय की साधना और कभी बाहर गया ही नहीं संसार में, तो सोचा मैंने क्रोध को जीत लिया है हिमालय की उन वादियों में, उन निस्तब्ध शांतता में, उसका मन बहुत शांत हो गया। और एक दिन शिष्यों ने कहा कि महाराज नीचे चलो, अच्छा मेला लगा है, भक्तों का कल्याण भी तो करो, तो वो बड़ी मुश्किल से माना और नीचे आया। और नीचे जैसे ही मेले में पहुंचा, वहां पर इतनी भीड़, तो किसी ने जोर से इसके उसके पैरों पर पैर रख दिया, और जैसे ही पैर रखा, 20 साल की साधना न मालूम कहां खो गई, और जबरदस्त क्रोध का भाव जागृत हुआ। 20 साल में जो पर्वत उसे न कह पाए, एक सेकंड के जनसंपर्क ने उसे बता दिया कि क्रोध अभी भी वही है, वो गया ही नहीं। तो पहाड़ों पर रहने वाले हे आबू निवासी हो कभी नीचे भी उतर कर देखो भीड़ में हाँ, कई लोग जाते नहीं है कहीं हम भी नहीं जाते परंतु क्रोध का पता तो तब चलता है जब संगठन में उतरे, क्रोध का पता तो तब चलता है जब मेले में कोई हमारे पैर पर जोर से पैर रख दे, तब पता चलेगा कि यहाँ बैठकर जो साधना कर रहे हैं वो क्रोध का केवल दमन मात्र था या क्रोध पर जीत थी, क्या था। अगर वो भीतर है वो निकलेगा, उसे केवल एक मौके की तलाश है, जैसे क्रोध वैसे ही मोह। सन्यासी पत्नी को और बच्चे को छोड़कर निकल जाता है, परंतु पत्नी के प्रति जो मोह है और बच्चे के प्रति जो मोह है, उस मोह को साथ में ही लेकर निकलता है, इधर से निकलता है उधर जाता है, वही मोह जो यहां पर घर बनाता है, वही वह उधर आश्रम तैयार करता है, वही मोह जिसने यहां बच्चा पैदा किया था और जो विस्तार किया था वहां अब शिष्य पैदा करते हैं, वही घर के लिए जो यहां पर कोर्ट कचहरी करके लड़ सकता है, वही अब आश्रम के लिए भी लड़ सकता है। ये सब तो छोड़ा, पर मोह तो वही था, मोह को थोड़ी पता है आश्रम और क्या है और घर क्या है, मोह को थोड़ी ना पता है कोर्ट कचहरी इसके लिए हो रही है उसके लिए, उसे तो बस मोह है, बस वो करना है। तो जब तक वो अंदर है वो बाहर आएगा, खत्म उसे जड़ से करना है, वृक्षों के प्राण जड़ों में है, आबू के जो पेड़ है नीचे उतरते जब है तो जब धूप होती है उस सीजन में सब कुछ सूखा सूखा हो जाता है, सब सूख जाते हैं, कुछ नहीं रहता, परंतु जैसे ही मौसम बदलता है फिर से वह हरियाली आ जाती है। कहां से आई? क्योंकि प्राण जड़ों में थे, जड़ अभी भी थे, जड़ों को कुछ नहीं किया था। तालियों को कितना भी काटो, जब तक जड़े सुरक्षित है, जड़ों में उसके प्राण है, उसकी चेतना है, वो सुरक्षित है। उस जड़ों तक तूफान पहुंच नहीं सकते, उस जड़ों तक धूप पहुंच नहीं सकती। इसके लिए जब तक जड़े हैं, वो फिर निर्माण होगा सब कुछ। अगर विकार अंदर ही है तो फिर से वो हरा भरा वृक्ष फिर से पल्लवित होगा, फिर से उगेगा, फिर से सब कुछ आ जाएगा। और हम ऐसे ही सोच रहे थे जब धूप थी तब कि कुछ है नहीं अभी झाड़ पर, परंतु वो फिर आ गया सब कुछ। कहां से आया? साधना तो बहुत की, जड़ों से समाप्त नहीं किया है उसको। जड़ों से समाप्त करना अर्थात उसको संपूर्ण जान लेना, ये जानना ही समाप्त करना है। विधि क्या है जड़ों से समाप्त करने की? अंधेरा कमरा है, उसमें एक रस्सी है, अंधेरे कमरे में रस्सी रखी हुई है। दो व्यक्ति वहां आए, एक को लगा सांप है, भयभीत होकर भाग गया, रस्सी रखी है, एक को लगा सांप है, भयभीत होकर भागा, दूसरे को लगा सांप है, तलवार निकाली और लड़ने के लिए तैयार है। दोनों से, दोनों में से कौन सही है? दोनों ही भूल में है। विधि क्या है फिर? उसके पास जाना और जानना कि वो सांप है ही नहीं, रज्जु और सर्प। इसको शास्त्रों में रज्जु और सर्प का उदाहरण दिया जाता है, कहा जाता है। संपूर्ण वेदांत शास्त्र में यह उदाहरण बार बार आता है कि जो जैसा है उसको वैसे ही जानना। क्या क्रोध हमारा स्वभाव है? एक तो है क्रोध, क्या हमने इस क्रोध को जाना है? क्योंकि जब क्रोध आया और क्रोध आने के बाद फिर पश्चाताप, परंतु जब क्रोध था तब हम नहीं थे, और जब पश्चाताप है तब क्रोध नहीं है। यहां क्रोध आया, जब क्रोध आया मनोवैज्ञानिक कहते हैं वह क्षणिक पागलपन की अवस्था है, वहां हम नहीं होते, कोई और ही होता है। क्योंकि क्रोध आने के बाद जब पश्चाताप होता है तब हम सोचते हैं कि वो कौन था फिर, वो भूत कहो या जो भी कहो, वो मूर्छा की अवस्था थी, अब अमूर्छा में, अब जागरण में है। तो यहां पता चलता है, यहां फिर कितना भी पश्चाताप करो फिर वो आता है, और जब वो आता है तब हम मर जाते हैं, हम नहीं होते, तब वहां कोई और होता है। कैसे जीते? जीत की विधि है उसको जानना, वो क्या है। अगर कोई व्यक्ति क्रोध करे, उसका ही वीडियो लिया जाए और उसको ही बाद में दिखाए, तो वो कहेगा ये मैं हूं ही नहीं, पहली बात तो। परंतु उसे अगर मुक्त होना है तो उसे ये स्वीकार करना पड़ेगा कि यही मैं था, परंतु ये मेरा वास्तविक स्वभाव नहीं था, ये जो था एक क्षणिक पागलपन है। वो पागल और ये पागल, इन दोनों में ज्यादा भेद नहीं है, लंबाई का अंतर है। वो पागल लंबे समय तक पागल है, ये पागलपन क्षणिक पागलपन है। अगर कोई ये जान जाए कि ये भी पागलपन है और ये मेरे स्वभाव के विपरीत है, जितना जितना गहराई से इस बात को जानेंगे उतना उतना वो क्रोध से मुक्त होते जाएगा। क्योंकि क्रोध से मुक्त होने की विधि है संपूर्ण न सोने की अवस्था, संपूर्ण जागरण, सचेत, चौकस, अलर्ट, माइंडफुलनेस, अवेयरनेस की अवस्था, अमूर्छा की अवस्था। इस अवस्था में सदा रहना अर्थात आत्माभिमान, उसमें क्रोध नहीं आ सकता है, क्योंकि आत्मा का स्वरूप जो है वो आनंद है। अगर हम उसी स्वरूप में रहते हैं तो क्रोध कैसे आ सकता है? जो क्रोध है वो एक्चुअली हमारा स्वभाव ही नहीं है, वो भी झूठ है। और हम उससे एक तो दो चीजें करते हैं, एक तो लड़ते हैं तलवार निकाल कर, और या तो भागते हैं। इसके लिए वो वैसे के वैसे बना रहता है, कमरे में रस्सी पड़ी हुई है, एक तो भाग गया, दूसरा तलवार लेके लड़ रहा है 10 साल से। विधि है उसको जानना, उसके समीप जाना, तो पता चलेगा वो तो रस्सी है, तो पता चलेगा ये हमारा स्वभाव ही नहीं है, तो वो छूट जाएगा, गिर जाएगा। जड़ों को जब तक खत्म नहीं करेंगे वो वृक्ष वैसा ही रहेगा, जैसा क्रोध के विषय में वैसा ही मोह के विषय में, जैसा मोह के विषय में वैसा ही काम के विषय में। और ये सबसे महत्वपूर्ण है। एक है काम का दमन, एक है काम से संपूर्ण मुक्ति। जो भी अध्यात्म मार्ग में ब्रह्मचर्य धारण करते हैं 90% दमन ही करते हैं, जानने का अवसर ही प्रदान नहीं होता है। जो भी जाते हैं अध्यात्म के पथ पर, वहां दमन किया जाता है। यह दमित भावनाएं, सेक्सुअल सेपरेशन, जीवन में लंबे समय के बाद विक्षिप्तता के रूप में प्रकट होती है, शरीर के रोगों के रूप में प्रकट होती है। जो है नहीं परंतु मरीज कहता है ये हो रहा है और वो हो रहा है, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, ये सब है सेपरेशन का बाहरी स्वरूप, क्योंकि कहीं ना कहीं सप्रेस हुआ है। वह सप्रेस्ड सेक्सुअल डिजायर्स मैनिफेस्ट इन द फॉर्म ऑफ बॉडीली एलिमेंट्स। जब तक इसको समझ कर उसको समाप्त कहो या रूपांतरण कहो नहीं किया जाता है, वो वैसे ही बना रहता है। वहां काम महाशत्रु है, आदि मध्य अंत दुख देता है, ये वाक्य कानों पर पड़ते हैं और गिरते हैं नीचे, उस तक पहुंचते नहीं है। देह का आकर्षण आत्मा में छिपा हुआ रहता है, अलग अलग समय पर अलग अलग रूप से वो प्रकट होता है, परंतु आध्यात्मिक पथ का राही कभी उसे स्वीकार नहीं करता है। वो कहता है मैंने जीत लिया, परंतु वो जीत नहीं, वास्तव में दमन था। वो दमन अवसर की तलाश में है, कहीं ना कहीं से उसे अवसर प्रदान होता है, चाहे टीवी, चाहे वीडियो, चाहे व्हाट्सएप, चाहे कोई मीडिया, चाहे फेसबुक या कोई मैसेज या किसी का सहयोग। अपनी काम की तृप्ति आत्माएं एक दूसरों से मित्रता बढ़ा कर करती है। अपनी काम की तृप्ति स्त्री और पुरुष एक दूसरों से संपर्क बढ़ा कर करते हैं। है वही काम, परंतु क्योंकि आध्यात्मिक पथ के राही है सभी, इसके लिए वो आश्रम, वो घर, वो बच्चे, वो शिष्य, संसार में जिसे काम कहते हैं और घृणित और निंदित समझते हैं, अब यहां सेवा शब्द का प्रयोग किया जाता है। सेवा के लिए आवश्यक है, सेवा के लिए जरूरी है, परंतु अंदर में ऑपरेट वही काम है। ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी एक दूसरे को देखकर अपने काम की तृप्ति करते हैं। ऊपर से भाव है आत्मिक दृष्टि, परंतु अंदर में देह और देह का आकर्षण और देह भान समाया हुआ है। जब तक इसका संपूर्ण रूप से, मूल रूप से मूलोच्छेदन अप्रूव कर नहीं देते, तब तक ये बना ही रहेगा। सबसे पहले तो ये स्वीकृति आवश्यक है कि अब तक भी हम में है, तब कहीं जाकर दूसरा संकल्प आएगा कि कैसे इससे मुक्त हो। जब संकल्प है कि इससे मुक्त होना है, तो दूसरा संकल्प आएगा कि इसे जानना भी है। संपूर्ण जानना अर्थात ही मुक्ति है, संपूर्ण ये जानना कि यह देह क्या है, इस देह में कैसा आकर्षण, इस देह में क्या ऐसा है, इसका संपूर्ण ज्ञान और उसकी संपूर्ण स्मृति, स्पष्ट स्मृति, ये है देह, ये है इसकी वास्तविकता। जब तक इस बात का चिंतन नहीं किया जाए, दमित रूप से वह काम वैसा ही रहता है, अवसर की तलाश मात्र है। अवसर कभी भी आ सकता है, क्योंकि संपूर्ण वातावरण ही कामुक है, हवाओं में ही काम है, टीवी पर जो भी चैनल खोलो उसमें काम ही है, चाहे वो न्यूज हो या चाहे वो कोई धार्मिक सीरियल ही हो, कुछ भी खोलो उसमें वही भरा पड़ा है, क्योंकि संसार की आत्माओं के चरित्र नहीं है, अभी गिर चुके हैं सभी। जो कुछ कर रहे हैं धार्मिक भी, उसमें भी भावनाएं शुद्ध नहीं है, अपवित्र भावनाएं हैं। उसमें से जो कुछ भी उत्पन्न हो रहा है वो कामुक ही है। इसके लिए थोड़ी बहुत साधना नहीं, कल की मुरली में बाबा ने कहा था वृत्ति की बात कही थी, रूहानी खुशबू का आधार वृत्ति है, वृत्ति कहा था। वृत्ति अर्थात वो लीक बन गया है, ट्रैक बन चुका है, आदत बन गई है, नस नस में समा गया है, जैसे देहभान समा गया है वैसे विपरीत आदतें अभी निर्माण करनी है। जैसे देहभान की वो आदतें है, अभी नई आदतें निर्माण करनी है। फ्रांस में एक बहुत बड़ा चिकित्सक हुआ है, इमाइल कुए, इमाइल कुए, जिसके पास हजारों लोग आते थे और वो सभी ठीक होते थे। उसने जो विधि यूज की वो एक दूसरे प्रकार की थी। उसने केवल संकल्प दिए आत्माओं को, जो भी बीमार व्यक्ति थे, कि मैं बीमार हूं ही नहीं, मैं संपूर्ण स्वस्थ हूं। केवल इन संकल्पों के आधार से ही कितने मरीज वैसे ही ठीक हो गए। कंडीशनिंग किया माइंड को, जो माइंड कंडीशन हो गया है, मैं बीमार हूं मैं बीमार हूं मैं बीमार हूं, जो एक प्रकार की आदत बन गई है, अभी विपरीत आदत तैयार करो। जो देहभान की आदत बन गई है, अभी आत्माभिमान की आदत तैयार करो। जो विकारों की आदत बन गई है, अभी निर्विकारिता की आदत तैयार करो। एक नया ट्रैक तैयार करो, जैसे ब्रेन में वो ट्रैक तैयार हो चुका है, न्यूरोप्लास्टिसिटी जिसको कहते हैं, अभी एक नया ट्रैक तैयार करो। उसके लिए बार बार अभ्यास करने की, जैसे वो देहभान कैसे हुआ, क्योंकि बार 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 अभ्यास किया, वो विकारों में बार 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 जाकर उसकी आदत बन गई है, न चाहते हुए भी देहभान में आ जाते हैं, क्योंकि आदत इतनी पक्की है इतने जन्मों की। अभी एक नया ट्रैक तैयार करना है, एक बुद्धि की नई लीक, एक पगडंडी, चलते जाओ तो पगडंडी तैयार होगी। बार बार योग का अभ्यास करते जाओ तो अशरीरीपन की आदत आएगी, होगी, वो वृत्ति में आएगा। मैं रूह हूँ, रूह से बोल रहा हूँ, रूह को देख रहा हूँ, मैं रूह सुप्रीम रूह की छत्र छाया में हूँ, मैं रूह सुप्रीम रूह के साथ कंबाइंड हूँ, मैं रूह उस रूह के बिना रह नहीं सकता, न वो मेरे बिना रह सकता है। ये अभ्यास दिए ना कल, उसकी श्रीमत के बगैर एक कदम भी मैं चल नहीं सकता। ये सब कहने की बातें नहीं है, रटने की बातें नहीं है, भाषण देने की बातें नहीं है, केवल सुनने सुनाने की बातें नहीं है। वृत्ति रग रग में समा जाए, उसके लिए एक जबरदस्त साधना की आवश्यकता है। केवल बैठकर उसकी चर्चा करना भी पर्याप्त नहीं है। साधना जो कि एकांत में होगी, मौन में होगी, अंतर्मुखता की गुफा में बैठकर होगी, ऐसी साधना की आवश्यकता है। तो ऐसी साधना सभी को करनी है। तो चाहे दुनिया का कोई भी सी आइडिया आ जाए, फिर चाहे ज्ञानी चाहे अज्ञानी, अगर हमारे अंदर वो है ही नहीं तो कैसे आग लगाएगा। जड़ों से ही उसको उखाड़ फेंक दो, मूलोच्छेदन उन्मूलन अपरूट इरेडिकेट। ओम शांति।